आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह पर पाकिस्तान की हालिया टिप्पणी को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा, पड़ोसी देश को दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी नारकोटिक्स विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक प्रभावी बनाने का दिया निर्देश। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी पीजेंट शो का उद्घाटन। कहा, स्काउट गाइड है युवाओं में बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम। और 2 से 15 दिसंबर तक वाराणसी में आयोजित होगा काशी तमिल संगमम का 4th संस्करण। सफल आयोजन के लिए तैयारियां तेज। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह पर पाकिस्तान की हालिया टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने कहा कि पड़ोसी देश को दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इन टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करता है।
हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
चीन से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न तथा अविभाज्य अंग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर एंटी नारकोटिक्स विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। श्री योगी ने कहा कि अपराधियों तक यह संदेश जाना चाहिए कि प्रदेश में अवैध ड्रग का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई देश संविधान की मूल भावनाओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ता है तो उसे विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता।
जब भी कोई देश अपने इन मूल भावनाओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ता है उसको विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना रखी। अगर हमें विकसित और आत्मनिर्भर भारत चाहिए तो इसके लिए हर भारतवासी को चाहिए कि वो उन पंच प्रणों के साथ जुड़ें, जो पंच प्रण हमें हमारे दायित्वों का एहसास करा सके।
विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया का पहला चरण प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से पूरा किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल कलराज मिश्र कल ग्रेटर नोएडा स्थित SIR संबंधित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बीच श्रावस्ती में SIR प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर 5 BLO को निलंबित कर दिया गया है और कई अन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती के जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी पांडे ने बताया कि समय पर काम पूरा करने वाले BLO को सम्मानित भी किया जा रहा है।
लगातार हम लोग इस सतत पर्यवेक्षण कर रहे हैं और कुछ हमारे BLO ऐसे थे जिनके द्वारा शिथिलता बढ़ती जा रही थी, तो उनके ऊपर बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा तनख्वाह रोकने की, नोटिसेस की और सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक अभियान भी चलाकर BLO से काम हमको समय सीमा के अंतर्गत पूरा करना है। तो सभी BLO को मैंने ये भी निर्देशित किया है कि जो लोग 27 नवंबर तक अपना 100% डिजिटाइजेशन कर लेंगे उनको जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाएगा।
वाराणसी में जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कल कई बूथों का निरीक्षण किया और अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारी YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कल 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में पीजेंट शो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्काउट गाइड्स के उत्साह, अनुशासन और सेवाभाव की सराहना की। श्री खन्ना ने कहा कि स्काउट गाइड अत्यंत पवित्र एवं सेवा का क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड स्वैच्छिक शैक्षिक आंदोलन है जो युवाओं में बौद्धिक आध्यात्मिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 2 से 15 दिसंबर तक काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आयोजन करेगा। यह आयोजन तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जाता है। वाराणसी में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम को लेकर तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
काशी तमिल संगमम में छात्र शिक्षक आध्यात्मिक विशेषज्ञ आदि 7 श्रेणियों में तमिलनाडु से 1400 से अधिक प्रतिनिधि काशी आएंगे, जहां वे दोनों प्रदेशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को साझा करेंगे। इस बार आयोजन में 2 नई पहल की जाएगी। पहली है तमिल करलर कलम, जिसके तहत उत्तर भारत के छात्रों को तमिलनाडु में तमिल सीखने का मौका मिलेगा। दूसरी पहल अगस्त एक्सपीडिशन है, जिसके तहत 3 काशी से काशी तक की यात्रा कराई जाएगी, जिसमें तमिलनाडु के देश के प्रति योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। संगमम का समापन 15 दिसंबर को रामेश्वरम में होगा। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
काशी तमिल संगमम के प्रतिभागियों के लिए 29 नवंबर से 12 दिसंबर तक कन्याकुमारी, चेन्नई और कोयम्बटूर से बनारस के बीच 7 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। वापसी यात्रा 5 से 17 दिसंबर तक चलेगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 4 नई श्रम संहिताओं की समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहना हो रही है। मेरठ बागपत के उप श्रमायुक्त एवं उप कल्याण आयुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि पुराने श्रम कानूनों को समाहित करते हुए सरकार ने उनकी जटिलताओं को कम किया है।
ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होनी चाहिए। इसमें जैसे न्यूनतम वेतन सभी कैटेगरीज के लिए लागू कर दिया गया है, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस लागू कर दिए गए हैं, सोशल सिक्योरिटी ऑलमोस्ट सभी के लिए लागू कर दी गई है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जोड़े गए हैं जो नई कैटेगरीज है।
गोवा के पणजी में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। फिल्म महोत्सव के 7वें दिन कल कई मशहूर फिल्मों की स्क्रीनिंग, मास्टर क्लास तथा कई कार्यक्रम आयोजित हुए। एक रिपोर्ट।
इफ्फी में कई गतिविधियां संचालित की गईं। भारतीय पैनोरमा में गोंधल, भाई मोंदा 2.0, पत्रलेखा, इम्बू और कमिटी कोरुल्लू जैसे फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। भूपेन हजारिका पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। वही बंगाली फिल्म पोखी राजर दिन के निर्देशक ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के एक अधूरे कार्य को पूरा किया है। उनकी फिल्म विज्ञान और भारतीय ज्ञान पर केंद्रित है। कला अकादमी में फिल्म समीक्षक की भूमिका और उसके व्यापक प्रभाव पर विशेष फिल्म क्रिटिक राउंड टेबल का आयोजन किया गया। इस स्थान पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर एका लखानी ने भी मास्टर क्लास ली। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
सिद्धार्थनगर जिले में सांसद खेल महोत्सव के तहत कल से ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गईं। इस दौरान वहां के सभी 14 ब्लॉकों में प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इनसे जुड़े उद्घाटन समारोह के दौरान स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक पहल है।
ये पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के अंदर की ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को, जिनको कभी एक उचित मंच या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को भी जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, वो जिले, प्रदेश, देश स्तर अपनी प्रतिभाओं से और एक खिलाड़ी के रूप में विजेता हो सकते हैं और स्थान बना सकते हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के 7वें आरोपी शोएब को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया। शोएब को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह पर पाकिस्तान की हालिया टिप्पणी को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा, पड़ोसी देश को दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी नारकोटिक्स विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक प्रभावी बनाने का दिया निर्देश। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी पीजेंट शो का उद्घाटन। कहा, स्काउट गाइड है युवाओं में बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम। और 2 से 15 दिसंबर तक वाराणसी में आयोजित होगा काशी तमिल संगमम का 4वां संस्करण। सफल आयोजन के लिए तैयारियां तेज। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।